जय माँ। संसार एक पहेली है और इस पहेली को सुलझाने की चेष्टा में कई प्रकार के प्रयास मनुष्य करता है, लेकिन श्री अरविंद जी कहते हैं कि आवर लाइफ इज ए पैराडॉक्स विद गॉड फॉर की। पहेली की जो चाबी है, जहाँ से उपजा है, वहीं पर इसकी चाबी भी मिलेगी। तो प्राय आध्यात्मिक जीवन में एक बात तो सभी मानते हैं कि एक है, आप उसको भगवान कहें जो भी कहें, उनसे ये सारी सृष्टि उपजी है, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन समस्या ये होती है कि फिर ये सृष्टि ऐसी है तो ये क्यों है, इत्यादि इत्यादि। संसार में हमारा जो अनुभव है वो एक का नहीं है, अनेकत्व का है। तो ये अनेकत्व का अनुभव, लेकिन एक से उपजाए, ये लॉजिक भी कहेगी कि एक ही से निकला होगा। तो इसको सुलझाने के प्रयास में योगियों ने, ऋषियों ने, जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, भगवान को ढूंढते रहे, उनको उस एक का दर्शन हुआ, किसी प्रकार का कांटेक्ट भी हुआ। लेकिन जब उनसे कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने जब ये इस अनेक को देखने की, समझने की चेष्टा की, तो वो गुत्थी और भी गहरी हो गई। गहरी क्यों हो गई? जब तक अनेक थे, आप अनेक को समझने की चेष्टा कर रहे थे, पर जब एक मिला तो कौन मिला? सच्चिदानंद, सत। यहां क्या दिखता है? असत। वो मिला चित, परफेक्ट कॉन्शियसनेस। यहां क्या दिखता है? अचित, अचेतनता में मनुष्य रहता है। वहां क्या मिला? तपस शक्ति। यहां क्या दिखती है? हर प्रकार की सीमाएं, वीकनेसेस, कमजोरी, दुर्बलताएं। और वहां क्या मिला? आनंद। और यहां देखने को मिलता है सुख दुख और उनके सम्मिश्रण से बनी हुई कई अवस्थाएं। तो इसको देख करके ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये तो आपको मिला है केवल एक ड्राइव करने के लिए वहां तक, ताकि आप सुख दुख में झूलते हुए एक दिन तो ढूंढोगे कि कौन है एक, और आप उसे की तरफ जाने लगोगे। जब एक को पालोगे तो इसका औचित्य समाप्त हो गया। फिर भी अगर आप प्रश्न करोगे कि ये क्या था, तो ये एक इल्यूजन था जो आवश्यक था आपके लिए, एक प्रकार की मरीचिका थी, और वो एक समय जरूरी थी उन अनुभवों से गुजरते हुए अंत में एक को पाने के लिए। अब समस्या और गहरी हो जाती है कि अगर ये इल्यूजन भी था तो इतना भयानक इल्यूजन क्यों था? उस एक के अंदर ऐसी छाया कैसे उत्पन्न हुई? और भी समस्याएं आती हैं कि यदि अंत एक है तो ये अनेक की आवश्यकता ही क्या थी टू स्टार्ट विद? तो ये सारे, बहुत सारे प्रश्न हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे। और भी कई प्रश्न हैं जो हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं उनका समुचित हल नहीं है, समाधान नहीं है। अब समाधान पाने वाले तो खुश रहे, नहीं ये है इल्यूजन, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन समुचित समाधान नहीं है, उसका कारण जो है ये मैं बता रहा हूँ कि अगर सच में एक के अंदर जाके मोक्ष प्राप्त कर लेना यही अंत है, तो इसकी आवश्यकता ही क्या थी? एक को अनेक बनने की आवश्यकता ही क्या थी? प्रतीति की क्या आवश्यकता थी? माया की क्या आवश्यकता थी? अच्छा, अगर सब बहुत सुंदर है तो चलो समझ आता है कि हम लोग एक घूमने के लिए निकले, घर से निकले, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देख के आए, वापस घर आ गए, तो इट मेक्स सेंस। लेकिन घूमने के लिए निकले, जहां गए वहां कहीं पर ये फेल्योर हो रहा था, कहीं ये दुर्घटना हो रही थी, अंत में घर आ गए, तो इसका तो कोई औचित्य नहीं है। इसको एक्सप्लेन किया गया कई तरहों से, उनका भी औचित्य नहीं है, पर अभी हम उसके डिटेल में नहीं जाए। तो श्री अरविंद उस कड़ी को ढूंढ रहे थे जो संसार और वर्ल्ड दोनों में से किसी को भी नेगेट किए बिना उनका समुचित समाधान दे। कि अगर नेगेट कैसे करते हैं? कई बार हम कहते हैं नहीं, वो एक है ही नहीं, लिए बोलने की जरूरत क्या है कि भगवान है, अपने आप चीजें प्रकृति में हो रही, तब आपको समस्या नहीं, ये आसान काम है, क्योंकि भगवान का अनुभव नहीं होता प्रारंभ में, वो एक आपके अंदर एक इंट्यूटिव सेंस से रहता है, तो ये कह देते हैं ये प्रकृति का खेल है, इसमें भगवान को लाने की आवश्यकता ही क्या है। तो उसके लिए ये आसान कार्य होता है। और जो भगवान को ढूंढ लेते हैं या कुछ हद तक आगे बढ़ जाते हैं, ढूंढना एक बहुत बड़ी बात है, तो फिर ये दूसरी समस्या आ जाती है कि दोनों को रिकनसाइल कैसे करें। तो उस कड़ी में जाते जाते जब श्री अरविंद मन के कई शीर्ष तक जहां योगी पहुंच के दर्शन करते थे, कहते ये एक है, तो श्री अरविंद देखते हैं कि ये जो उस एक को देख रहे हैं और इस संसार को देख रहे हैं, दोनों में कोई चीजें जो मिसिंग है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है उस पार पर्दे के और जो इस पार है, दोनों के बीच में एक ऐसा पर्दा है। आपको दिख तो रहा है कि उस पार है, लेकिन जब आप इधर देखते हैं पर्दे से जो छन के प्रकाश आ रहा है और यहाँ अंधकार में बदल जा रहा है, तो ये कुछ बात बन नहीं रही है। तो अधिकांश योगी वहाँ पर जा करके मन की उच्चतम ऊंचाइयों पर जाके वहाँ आत्मदर्शन करते हैं, और जो पर्दे के पार है उसके बारे में उनका ये मानना है कि ये अंत में आप इसके पार जब जाना हुआ, आपने देख लिया, आप छलांग लगा के जा सकते हैं, और अगर आप चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, मतलब ये प्रॉब्लम रह जाएगी। आप ब्लैक होल के अंदर चले गए तो आपने तो प्रकाश देख लिया, लेकिन यू कांट कम बैक टू टेल एनीथिंग। आप यहाँ रहिए, यहाँ से जो कुछ आपको दिख रहा है वहाँ तक आप ले आ सकते हैं। तो ये मन की जो उच्चतम ऊंचाई है उसी को अधिमन या ओवर माइंड कहा गया। अधिमन किस लिए कहा गया? अधिष्ठाता, जो उसके ऊपर है, मन के ऊपर है। तो मन की हम लोग समझते हैं कि ये मन हमारा ये सर्वोच्च है, लेकिन योगी कहते हैं कि ये मन सर्वोच्च नहीं है। मन ये हमारा जो तार्किक मन है, बौद्धिक मन है, इसके भी परे कई ऐसे चेतना के सोपान हैं, सीढ़ियाँ हैं, कड़ियाँ हैं, जो हमको धीरे धीरे प्रकाश की ओर ले जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये मन अंधकार में अचानक प्रकाश धीरे धीरे ले जाती हैं। ये ऋषियों की यही तपस्या थी वैदिक काल में, चेतना के सोपान पे चढ़ते चढ़ते वो भी यही ढूंढ रहे थे, वो क्लू ढूंढ रहे थे। बाद में जो चीज हुई वो एक अलग बात है। इसलिए वो आह्वान भी करते हैं इस संसार को, मन को, जैसे फॉर इंस्टेंस गायत्री मंत्र है, तो ऋषि क्या कह रहे हैं, मेरा मन उस प्रकाश से चले, संचालित हो। अगर ये माया है तो फिर क्या आवश्यकता है आपको, इट डजंट मेक सेंस। तो वो प्रयास इसी प्रकार का था, लेकिन वो पर्दे के पार वो एक इतना परम प्रकाश पुंज है कि आप इसको क्रॉस अगर करते हैं तो आप वापस नहीं आ सकते बताने के लिए। तो यहां तक तो अधिमन हो गया जो लोगों ने देखा। ये नहीं कि हर व्यक्ति अधिमन पे चढ़ के देख रहा था, इंट्यूटिव माइंड से भी कुछ लोग देख रहे थे। जैसे आप नैनीताल से भी आप नंदा देवी पर्वत देख सकते हैं, और आगे जाके और क्लैरिटी से देख सकते हैं, कंचनजंगा भी देख सकते हैं। तो चेतना के कई सोपान हैं जहां से आपको उस एक का ग्लिम्स होता है, और वो अद्भुत है, काफी कुछ हमारे अंदर एक प्रकार का परिवर्तन भी लाता है, लेकिन वो एक क्षणिक चीज है। श्री अरविंद इस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते वो भी पहुंचते वहां पे, और वो देखते हैं हाँ ये तो अद्भुत है दृश्य जो दिख रहा है, लेकिन गुत्थी तो वही है। तो अब वहां पे जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसके पार क्या है, इसके बारे में ऋषियों ने कहा है कि ये परार्ध है, इसमें सच्चिदानंद छिपे हुए हैं, उस अपने ही प्रकाश में छिपे हुए हैं। तो आप ये तो कह सकते हैं कि वो क्या है, सच्चिदानंद है, उनसे कांटेक्ट किसी भी स्तर पे हो सकता है क्योंकि वे सर्वत्र हैं। उस पर मन एक वो भी बना लेता है, सतलोक है, चित्तलोक है, तपोलोक है, आनंद घन लोक है, रिफ्लेक्शन से कहीं ना कहीं उसका दर्शन भी कर सकता है। तो श्री अरविंद इसको पार करके जाते हैं। जब पार करके जाते हैं तब वो पूरी सृष्टि का प्रारंभ से नीचे तक कैसे आई और ये पूरी साइकिल क्या है, तब प्रकट होती है। क्योंकि अधिमन और उसके नीचे इसकी चाबी नहीं है। तो वह जो पार करके जिस क्षेत्र में जाते हैं उसको अतिमन कहा गया। अति से दो शब्द, दो अर्थ निकलते हैं। एक है एक्सेस, लेकिन ये एक्सेस के सेंस में नहीं, ये नहीं है मन इज इन ए एक्सेस मोड ऑफ वर्किंग. यहां एक अति से एक और शब्द आता है, वो अर्थ आता है कि एक टोटल चेंज. तो टोटल जो चेंज है अति मन, वह सुपर माइंड है. तो सुपर माइंड, सच्चेदानंद, अधिमन और सारे के बीच में क्या संबंध है? अगर आप सुपर माइंड के परे केवल एक है, एकमेव द्वितीयम, नेक्स्ट स्टेप होता है उस एक के अंदर अनेकत्व की अंदर में भाव उठता है, प्रेरणा उठती है, जो भी कहे मानवीय शब्द है, संकल्प जागता है, एको हम बहुश्याम. तो जब संकल्प जागा तो जो बहुत है या मैनी हैं वो अभी केवल संकल्प में है, पर है एक ही. तो पहला लेयर हुआ जब संकल्प जागा. जैसे कवि के अंदर संकल्प जागता है कि मैं एक कविता लिखूंगा, लेकिन उसमें कितने पात्र होंगे, कैसे होंगे, क्या घटनाक्रम होंगे, ये अभी नहीं आया है. तो ये सुपर माइंड का सबसे पहला स्तर है जहाँ पे वो एक के अंदर अनेकत्व का भाव उठता है. वहां से सुपर माइंड का स्थान, रीजन प्रारंभ होता है. दूसरे स्टेप क्या होता है कि वो एक अपने अंदर अनेक प्रकट करता है. तो वो जो अनेक प्रकट करते हैं, ये सुपर माइंड का सेकेंड लेयर है. वहां एक भी है, अनेक भी है. और थर्ड में जब अनेकत्व हावी है और एकत्व पीछे है. लेकिन अब यहां भी एक और अनेक है, लेकिन वहां अंतर क्या है? सुपर माइंड के अंदर, अतिमन के अंदर जो अनेक है, अनेक कौन है? ये जीवात्माएं हैं, हम ही सबका ओरिजिनल रूप वही है. तो ये अनेक है सुपर माइंड के अंदर. ये सारे जो यूनिट है अनेकत्व के, वो सब उस एक के प्रति कॉन्शियस है, वो जानते हैं एक है. वहां तक तो कोई बात नहीं हुई. वो साथ में प्रत्येक यूनिट हर एक दूसरी यूनिट के प्रति वो ये जानती कि यह भी उस एक का एक रूप है. और वो साक्षात, वो कोई उसमें समस्या, फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सब जानते हैं उसमें. एवरी यूनिट नोज दैट द अदर यूनिट इज ऑल्सो द डिवाइन, वन डिवाइन, जिसने ये इस रूप में मेरे पास, मेरे से इंटरैक्ट कर रहा है. और जितने भी वहां अनेक हैं, सबका आपस में वो संबंध है. अब उस घर में तो आप झगड़ ही नहीं, आप कॉन्शियस हैं, उसी एक के रूप हैं. मेरे उसमें अंतर केवल प्ले के लिए अंतर है. उस एक ने मेरे अंदर ये धारण किया है. ये तुम्हारे प्रश्न की चाबी भी है. सुपर माइंड नोसिस में इसका सॉल्यूशन हो सकता है. उसी ने दूसरे के अंदर एक दूसरे रूप में धारण किया है, तो कोई समस्या नहीं. और सब परफेक्टली ट्यून्ड हैं डिवाइन के प्रति, अलाइन्ड हैं, क्योंकि अभी अलग ही नहीं हुए हैं. तो हर जो वहां पे जीवात्मा है वो बिल्कुल डिवाइन इंपल्शन से काम कर रही है. और चूंकि डिवाइन के अंदर सारी चीजों का एक हार्मोनियस यूनिटी है, इसलिए कोई आपस में कोई समस्या ही नहीं है. लेकिन ये जो एक एक बीज हैं जो परमात्मा ने अपने अंदर प्रकट किए हैं जीवात्मा के रूप में, अभी उनका प्लान इतना तक नहीं है. इतना तक होता तो कोई समस्या नहीं थी. अब उनके मन में ग्रैंड स्कीम है. ग्रैंड क्या स्कीम है? प्रत्येक बीज जो बीज रूप में जीवात्मा है वो मेरे ही जैसे बने, परमात्मा बने. अब ये परमात्मा कैसे बने? उसके अंदर जो प्रत्येक चीज है वो अल्टीमेट, प्रत्येक गुण या गति वो अपने अल्टीमेट ट्रूथ को रियलाइज करे, और वो ट्रूथ बाकी सारे परमात्मा की जो टोटैलिटी है उसकी हार्मनी में हो. तो ग्रैंड प्लान है. अब ये ग्रैंड प्लान कौन देख सकता है? स्वप्न भगवान ही देख सकते हैं. साधारण मनुष्य तो साधारण स्वप्न देखता है. तो अब क्या करते हैं, उस बीजों को वो सृष्टि के अंदर डालते हैं. कैसे डालते हैं? पहले स्वयं ही वो विस्तार में चले जाते हैं तो स्पेस बन जाता है. स्पेस क्या है? उसी एक का असीम विस्तार है, बाउंडलेस स्पेस. फिर उसके अंदर अब ये खेल शुरू होना है. तो गति होगी, कोई पावर होना चाहिए जो ड्राइव करेगी इंजन सबका. तो वही काल के रूप में गति बन जाते हैं. अब ये भी अनंत है, क्योंकि अब ये खेल एक बार शुरू हुआ स्पेस और टाइम का, तो चलता चला जाएगा. फिर कॉस्मिक मैनेजर्स होंगे, वो उनके अंदर से प्रकट होते हैं जब इस सारे खेल का संचालन करेंगे. क्यों परमात्मा क्यों नहीं सीधे उस पूर्ण स्वरूप में आ जाते हैं, तो खेल होगा ही नहीं, फिर वही चीज कंसिस्टेंट करती चली जाएगी. तो उनको भी छिपना है, वेल करना अपने आप को. तो कैसे वेल करते, चार ही ओरिजिनल एस्पेक्ट है भगवान के, सत चित तपस और आनंद. तो यही चार ओरिजिनल गॉड हेड्स प्रकट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथे कौन है, कृष्ण. तो अब यहां एक समस्या हुई है हमारे ट्रेडिशनल योग में, हम श्री कृष्ण को इस तरह से नहीं देखते हैं. देखते हैं कि वो आनंद घन हैं और आनंद घन घन श्याम या पुरुषोत्तम हैं, लेकिन हम कृष्ण को कैसे देखते हैं, मुख्यतः उन्होंने अवतार लिया है. इन तीनों के साथ अगर जोड़ते हैं तो वो किसके अवतार हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं, इस तरह से हम जोड़ के देखते हैं. अब इसके मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि वो है भी और नहीं भी, दोनों ही बातें इसमें हैं, पर दैट इज गोइंग इन टू मेटाफिजिक्स और डीपर स्पिरिचुअल नॉलेज. लेकिन मुख्य रूप से ये चार ब्रह्मा भगवान के सत एस्पेक्ट को, एग्जिस्टेंस जो है उनका, उसको मल्टीप्लाई करने का काम इनको दिया गया कि आप मल्टीप्लाई करो. तो वो है कि भाई उन्होंने ओरिजिनल उनको दिए गए बीज और उस बीजों को उनको मल्टीप्लाई करना है कई रूपों में. अब वो रूप बना रहे हैं, कहीं मछली का रूप, कहीं पेड़ का रूप, कहीं पौधे का रूप, कहीं पत्थर पहाड़, मल्टीप्लाइंग एग्जिस्टेंस है जिसमें ये बीज डाल सके. बीजारोपण हो रहा है. तो ये पहले तो एग्जिस्टेंस ब्रह्मा. अब विष्णु जी का काम क्या है कि अब ये तो सब बीज अब अलग अलग जगह पनप रहे, इनको जोड़ने की कड़ी होनी चाहिए, नहीं तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा. तो विष्णु भगवान चित स्वरूप हैं, तो वो चित वो ऐसी डोर है, थ्रेड है कॉन्शियसनेस की, जिससे ये सब जुड़े हुए हैं, ये आज मॉडर्न साइंस भी बताती है. और उनका बहुत सरल है, जहां पर वो देखते हैं कि असंतुलन हो रहा है, उनको कुछ नहीं करना है, एक हल्की सी डोर इधर खींचनी और वो संतुलन, धरती पर उसके कारण बहुत सारी घटनाएं होने लगेंगी और वो संतुलन फिर से स्थापित होता है. चेतना की डोर से सब जुड़े हुए हैं. शिव जी, ये सारे नाम रूपों में एक हद तक हो रही है काल के अधीन होकर गति, लेकिन हो सकता है कि एक क्रिएशन डावाडोल हो जाए, ना जाने कौन सी दिशा ले ले. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, मेगा प्रोजेक्ट है. तो शिव हैं जो संघारक है, वो इसको पूरा डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये नाम रूप को, एक्सपीरियंस जो है उस सृष्टि का, वो कभी खत्म नहीं होता है. इसीलिए हर प्रलय के बाद जब नई सृष्टि होती है तो सेम लेवल पे नहीं होती है, आगे की होती है. अब इसमें पूरी यात्रा जो है इतनी बड़ी भयानक कठिन यात्रा है, तो उसको कौन पकड़ के रखेगा, सबको कौन इंपेल करेगा, वहां कृष्ण जी आ जाते हैं. अब देखिए आप, कितना भी व्यक्ति कर्ज करे संसार को, ये बहुत बुरा है, भगवान भी बेकार है, मनुष्य बेकार है, सब बेकार है, उनसे आप कहिए तो जाने का इरादा है. देखिए अभी हम कैसे जाएंगे, हमारे बेटे की पढ़ाई नहीं हुई है, हमारे नाती पोते हैं. अब वहां पर ये सब आ जाता है. कृष्ण जी का जो आनंद है, ये की है जिसको लोग भूल गए. कृष्ण केवल एक कृष्ण अवतार या आनंद घन श्याम वहां नहीं है, वो सृष्टि के अंदर एज ए सैप ऑफ डिलाइट, हर चीज के अंदर, उस सीमा के अंदर आनंद. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं ना कि ये श्री कृष्ण इज वन ऑफ द कीज टू अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन. तो अब इन चारों देव आगे इन बीजों को डाल देते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना, ये कहानी के तौर पे बता रहा हूँ, जिसमें ये बीज डाल दिए जाते हैं. विष्णु भगवान उनके पोषण करते हैं, शिव जी उनको अपने हिसाब से जहाँ पर नष्ट होना है, जहाँ कैसे ले जाना है, और कृष्ण जी तो साथ चल रहे हैं, इसलिए कृष्ण हर जगह हर अवस्था में वो साथ 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 ले जा रहे हैं. अब ये करते करते सृष्टि के अंदर जीवात्मा का विकास हो रहा है, इन अनेकों अनुभवों के द्वारा, अनेकों योनियों के द्वारा, अनेकों नाम रूप में जा करके करते करते अब वो इस पॉइंट पर आ गई हैं जहां आज हम खड़े हैं. तो ये जो चारों मुख्य देवता हैं, ये अधिमन और अतिमन के द्वार पर हैं, सुपर माइंड और ओवर माइंड के. और इनमें भी जो प्रधान हैं वो श्री कृष्ण है। पूरे अब तक सृष्टि की जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस को कंडक्ट किया गया है वो श्री कृष्ण ने कंडक्ट किया, इसीलिए वो बार बार लोक संग्रहार्थ की बात करते हैं। शिवजी का काम है, हो गई विनाश लीला, उसके बाद वो ट्रांस में चले जाते हैं। विष्णु भगवान बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को वैसे कोई पूछता नहीं है, वो बना दिया उन्होंने सब, अब चलेगी। लेकिन कृष्ण के आनंद के कारण तो वो, और वो बहुत एग्जैक्टिंग है, उनका उनकी लीला की चर्चा की जाए तो वो अपने आप में एक विषय है कि वो कैसे ऑपरेट इस सृष्टि में कैसे कार्य करते हैं। ये प्ले है, लीला है, कैसी लीला है ये, संक्षेप में कहा जाए तो लुका छुपी का खेल है, वो श्री कृष्ण खेलते हैं। ये ओरिजिनल गेम है, इसीलिए बच्चों को भी बड़ा मजा आता है इसमें। आपको लगता है ये वस्तु मुझे जीवन में जीवन पर्यंत सुख दे देगी, कृष्ण की लीला है। और वो इंपेल करते हैं, जाओ जाओ जाओ, उसके पीछे आपको मिल जाती है, आपने हाथ में पकड़ लिया, मिल गई, हाथ खोला, खत्म हो गई। तो क्या हुआ, छुप गए श्री कृष्ण। फिर आपको पहले तो पीड़ा हुई कि क्या हो गया, फिर कृष्ण कहीं और जाके मुस्कुरा रहे हैं, अरे मैं यहां हूं, गलत जगह तुम चले गए। आप फिर गए, अच्छा वहां पर हैं, और आगे बढ़े, फिर आपने मुट्ठी में पकड़ा, फिर गायब हो गया। फिर श्री कृष्ण और दूसरे शिखर पे, यहां हूं मैं। ऐसे करते करते लोक संग्रहार्थ, तो अब तक ये सृष्टि एक उस पॉइंट पर पहुंच गई जहां ये चारों देव, अब वो अलग बात है कि हर व्यक्ति अपने देवता को प्रमुख मानता है, और उसमें समस्या है। समस्या क्या है कि अब सृष्टि किसी एक के लाइन पे मुख्यतः चलती है। इन देवों ने अपने अंदर से और अनेक 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 शक्तियां, बीइंग्स प्रकट किए, और जैसे पासिंग द पार्सल होता है ना, वैसे जीवात्मा एक से उत निकलकर दूसरे, क्योंकि धीरे धीरे तैयारी होनी है। गर्भ में जब बच्चा होता है, ऐसा नहीं होता है कि गर्भ धारण किया, माँ क्या कहती है, गर्भ में बच्चा पल रहा है, लेकिन वो बच्चा उस प्रारंभ में केवल एक मांस का टुकड़ा है। अगर आप टेक्निकली सोचें, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, एक समय उसका हृदय धड़केगा, तो एक लंबी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को परमात्मा बनना है। प्रॉब्लम ये है, वो केवल 9 महीने की प्रॉब्लम नहीं है, 9 युग बीत जाए बन, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो प्रत्येक जीवात्मा जैसे जैसे डेवलप करती है, किसी ना किसी इन चार देवों के किसी एक के अधीन आकर के चलने लगती है। वहीं से रिलीजन्स का जन्म होता है। इसलिए माँ कहती है, श्री अरविंद कहते हैं, ओवर माइंड इज द प्लेन ऑफ द गॉड्स, जहां से रिलीजन का जन्म होता है। रिलीजन से धर्म अलग शब्द है सनातन धर्म में, लेकिन रिलीजन जो इंग्लिश वर्ड के रूप में यूज किया जाता है, मत, संप्रदाय इत्यादि। अब लोग कहेंगे, हम लोग ये कहते हैं, लेकिन वेस्ट में तो क्या रिलीजन है, उनका देवताओं से क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। अब देखिए, इस्लाम, इस्लाम कौन से देवता से जन्म लेता है, इन्हीं चारों में आप सारे सब कुछ ट्रेस कर सकते हैं। तो शिवत्व से जन्म लेता है। शिव के कौन से एस्पेक्ट से? रुद्र भाव से। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे, ऑस्टेरिटी है, ऐसी ऑस्टेरिटी है कि म्यूजिक नहीं, डांस नहीं, गाना बजाना कुछ नहीं, चेहरे पर भी आप, वो अलग बात है कि फॉलो करना, वो बाद में वो इस्लाम क्या बन गया उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो इंपेलिंग फोर्स, डिस्ट्रक्टिव फोर्स, जो सारी सृष्टि को विनाश कर दे। और वो मानते भी हैं कि जब सब बन जाएंगे, या तो मुसलमान या सब मर जाएंगे, खुद भी वो मानते हैं कि तब आपका कयामत का दिन आएगा, उसमें आप जाएंगे जहां भी जाना है। तो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, रुद्र की वो ऊर्जा है उसके अंदर। इसीलिए अगर आप देखें तो इस्लाम में अगर किसी गॉड के प्रति, हिंदू गॉड के प्रति उनके अंदर थोड़ी सी वो है, तो वो शिव के प्रति, कुछ लोग जोड़ते भी हैं, काबा का भी शिव से संबंध, शुक्राचार्य, ये सारी कहानियों को अगर आप जोड़ेंगे, अटैक भी कहाँ करते हैं, सोमनाथ अगर आप देखें, शिव जी क्या स्थान है, मानो शिव जी कह रहे, जागो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो पंडितो, मोटे हुए जा रहे हो, तो उठो, शिवत्व को धारण करो। काश्मीर को अटैक करते हैं, वहां भी शैव तंत्र है, शिव की ऊर्जा से वो पोषित होते हैं, और वो वास्तव में रुद्र शिव का आवाहन कर रहे हैं। देखा जाए तो इट्स सो इंटरेस्टिंग, आप उसको तभी एनिहिलेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। रुद्र के सामने तो सारे विफल हो जाते हैं जब वीरभद्र जाते हैं, उनको केवल शिव ही टेम कर सकते हैं, तो वो एक अलग स्टोरी है। जिस जो निर्भय है, शिव कौन है, इज इमॉर्टल का भाव जो आता है, आप शमशान के परे, मृत्यु का भय नहीं है, ओनली सच पीपल कैन टेम दैट एनर्जी, वो फोर्स जो आती है। लेकिन दूसरे हैं जो विष्णु भगवान के पथ से जा रहे हैं, विष्णु भगवान की लीला अलग है, लक्ष्मी जी के साथ हैं, प्रेम सामंज, देखिए वैष्णव संप्रदाय में कितना स्वीटनेस, मतलब इतनी स्वीटनेस है कि कभी कभी लगता है कि कभी किसी सच्चे वैष्णव की बात में कर रहा हूँ, वो आपको हाथों स्पर्श करेंगे लेकिन मक्खन है, सच में जो करते हैं उनकी वाणी में मिठास होगी। आई मेट ऑल दीज पीपल, रियल वैष्णव, दे लॉट ऑफ स्वीटनेस इन साइड। फिर आप ब्रह्मा जी के तो कोई रास्ते पे जाता नहीं है, उसका एक अलग स्टोरी है, या श्री कृष्ण के रास्ते पर तो सीकर्स आफ्टर डिलाइट, तंत्र में भी है, ये दोनों पथ है। तो ये तीन मुख्य पथ पे लोग चलते हैं ऊपर की ओर, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के प्रति वो सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक पथ पे अब अगर आप इस्लाम में बोलेंगे कि म्यूजिक ये सब क्रांति होगी उनके लिए, अभी उन्होंने ये अलाउ किया है, अदरवाइज दे डोंट अलाउ, आप प्रकृति को भी सम्मिलित कर लो तो क्रांति होगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो रिलीजन्स हैं अलग अलग जो इन्हीं शक्तियों से उपजे, मिसगाइड हो गए, वो एक अलग स्टोरी है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, उसका पॉलिटिकल मिसयूज हुआ, उनका समय आ गया, क्योंकि हर एक का अपना एक कालखंड होता है, जैसे इजिप्ट के गॉड्स खत्म हो गए, ग्रीक गॉड्स खत्म हो गए और रोमन गॉड्स खत्म हो गए, वैसे ही ये जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है इसका समाप्त होने का समय आ गया, ये डेटेड चीजें हैं, एक्सपायरी डेट के साथ हैं, तो वो एक अलग कहानी। लेकिन अब मनुष्य ये सारे रिलीजन्स के साथ पोषित करता हुआ एक ऐसे स्थान पे आ गया जहां उसको रिलीजन के परे जाना है। अब इसका उदाहरण क्या है, क्योंकि जब आपस में मत संप्रदाय एक पॉइंट पे जाके नहीं सामंजस्य कर पा रहे, झगड़ा कर रहे, इवन भारतवर्ष में आप देखिए मत संप्रदाय आपस में कहते नहीं, अभी हाल में हुआ था ना राम जी के उसमें, कि एक मत जो शंकराचार्य का जो शिवत्व को धारण किया, दूसरा जो राम भद्राचार्य जो विष्णु भगवान के पक्ष को, आपस में दे कैन नॉट। अब ये और बात है, सनातन धर्म में एक बैकग्राउंड में उस वन को हम भूले नहीं है, वन एंड मैनी को, तो इसलिए वो कर जाते हैं, लेकिन आप देखिए कटार नहीं उठाते हैं, लेकिन बात वही है कि दे कैन नॉट हार्मोनाइज। तो रिलीजन इनटॉलरेंस फैनेटिसिज्म पहले भी था, लेकिन अब एक एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि अब रिलीजन का समय चला गया है, रिलीजन के समय जाने का मतलब है अब हमको अधिमन जितना मनुष्य को ऊपर ला सकता था, देवता जो मुख्य देवता, उसके बाद अनेकों अनेकों देवता, वो अब उन्होंने अपना काम कर दिया है, दे हैव डन ए वंडरफुल वर्क। अब नेक्स्ट स्टेप है जो सुपर माइंड, उसके पास हार्मनी की चाबी है, क्यों, वहां पे सभी शक्तियां सभी बीइंग्स जानते हैं उस एक को, और प्रत्येक को वो उस एक के ही उसमें देखते हैं, इंटेलेक्चुअली नहीं। इंटेलेक्चुअली तो आप देखिए शैव भी कहेगा सब शिव है, लेकिन वैष्णव से झगड़ा करेगा, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानियां हैं, कहेगा लेकिन वो एक आइडिया के हिसाब से पूरे संसार को एक करना चाहता है। रिलीजन की समस्या ये है, इस्लाम भी कहता है ब्रदरहुड, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स तो हो नहीं सकता है, मतलब आपके विविधता होगी नहीं, विविधता विविधता में विष्णु और आप देखें कि कुछ हद तक श्री कृष्ण, ये विविधता को, क्योंकि आनंद एक ऐसी चीज है जो हर चीज में समाई हुई है। तो ये जो जोड़ने की जो ये जो ह्यूमैनिटी है देवताओं के अधीन इन ए गुड सेंस आई एम सेइंग, उन्होंने अच्छा काम किया मनुष्य को पोषित करके यहाँ तक ले आए हैं, लेकिन आगे इसके आगे वो नहीं ले जा पाएंगे, इसके आगे मानव चेतना को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, वो नेक्स्ट स्टेप अतिमन है, उसको श्री अरविंद लेके आ रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं वो कर रहे हैं, क्या दूसरों को पता नहीं था? पता होता है, ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान को या श्री कृष्ण को पता नहीं है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है, एक यंत्र होता है या एक अवतार होते हैं। श्री राम को भी पता है कि श्री कृष्ण के रूप में एक अलग फॉर्मेट में लेके आऊंगा, लेकिन श्री राम के रूप में वो उस मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो आवश्यक है उस समय की मनुष्यता के लिए। तो श्री अरविंद के वो प्रतिनिधित्व करते हैं अब सुप्रामेंटल क्रिएशन का, और इस कारण क्योंकि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये कोई रिलीजन नहीं क्रिएट कर सकता। एक चीज तो बड़ी सिंपल है, कोई आइडियोलॉजी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रिलीजन अंत में कहता है जैसे मेरे रीति रिवाज या जो मेरे इष्ट हैं उन्हीं के बेसिस पर वो क्रिएट करना चाहता है। डाइवर्सिटी नहीं क्रिएट कर सकता है। आइडियोलॉजीज की भी यही समस्या है। प्रत्येक आइडियोलॉजी निकली है, अगेन यू कैन ट्रेस इट, इवन जो विश्वास करते नहीं करते परंतु किसी ना किसी एक देवता से निकली है, परंतु वो आइडियोलॉजी एक पॉइंट के बियॉन्ड आपको नहीं हार्मोनाइज कर सकती है। तो उसके लिए सुपर माइंड की आवश्यकता है, दैट इज द अति मन। और अति मन में कैसे ये हार्मोनाइज करेगा? ये ऐसे हार्मोनाइज करता है कि जैसे जैसे साधक अधिमन के देवताओं के परे जाने लगता है, अति मन की चेतना का उसको स्पर्श मिलने लगता है, तो क्या अनुभव करता है? वो अनुभव करता है कि सबके अंदर वही एक भगवान कार्यरत है, केवल एक प्रेजेंस के रूप में नहीं है, वही काम कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज उसको क्या स्पष्ट होती है? प्रत्येक के अंदर भगवान उसकी स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, उसके लॉ ऑफ बीइंग, उसकी व्यक्तिगत जो आवश्यकता है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। अब ये चीजें श्री कृष्ण हिंट करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए दूसरे का बैलेंस, इसीलिए कन्वर्शन की भारतवर्ष में कोई बात नहीं है। तो जो व्यक्ति ये चीज जानता है वो ये नहीं कि तुमको भी श्री अरविंद में मानना है या तुमको इसमें मानना है, ये नहीं करेगा वो, क्योंकि वो देख रहा है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसके अंदर भगवान ही ले जा रहे हैं, और अगर उसको कोई गाइडेंस या कोई बात कहनी है तो वो इस चीज को पूरा ध्यान में रखते हुए कहेगा। वो ये नहीं कहेगा हर व्यक्ति को कि आपकी सब समस्याओं का समाधान भगवान है, आप ये तो माया है, आप मुड़ जाइए। ही विल नॉट से लाइक दैट। तो ये जो दूसरा स्टेज है जहां पे हम ये जान जाते सुपर माइंड के पास हर किसी के इवोल्यूशनरी प्रोसेस पथ, एक एक स्टेज के अनुसार एक एक चीज जो प्रकट होनी है काल की गति में, उस सब का लेखा जोखा है। ये ओरिजिनल क्रिएटर है, तो उनको ठीक पता है कि किस समय क्या होना है, क्या किस अवस्था से गुजरना, और वो जरूरी है, इसलिए वो अपसेट नहीं करेंगे सृष्टि के क्रम को। तो ये एक दूसरी चीज जो सुपर माइंड के अंदर आके होगी। सुपर माइंड ऐसे ही ऑपरेट करता है, वो एक्सेलरेट कर देगा प्रोसेस को, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो लगेगा आपको डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि पुराना ऑर्डर खत्म होता जा रहा है। तो श्री अरविंद जिस नवयुग की बात करते हैं वो अधिमन के अधीन जो देवताओं का युग था, जो गॉड्स ने रचना की थी, जिसका सर्वोच्च अगर उत्कर्ष अगर आप देखें तो श्री रामकृष्ण परमहंस में। वो चाहते हैं कि ये, वो कहते हैं ना ऑल रिलीजन्स विल लीड टू दैट सेम पॉइंट, ये प्रयास है। पर आप इस बेसिस पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप में असंभव है। बहुत प्रयास कर लिया रिलीजन्स ने, रिलीजियस टॉलरेंस की बात हो सकती है, इंटरफेथ डायलॉग हो सकता है, लेकिन हर उसके बाद मनुष्य बाद में यही कहता है तो मेरा वाला अच्छा अंत में। तो वो इट कैन टेक यू, ये माइंड का सर्वोच्च संभावना है, और चूंकि ये माइंड इस संभावना से खेलने लगा है इसीलिए ये इसका इंडिकेशन है कि अब ये युग परिवर्तन का चक्र प्रारंभ हो गया। इसके पहले रिलीजियस टॉलरेंस, इंटरफेथ, ये सब कहाँ बात होती थी? ये 1893 से प्रारंभ हुआ जब उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने जो लेक्चर दिया, तो कहीं ना कहीं एक आभास आ रहा था कि अब ये समय आ रहा है। तो अब काल की गति बदल गई है, एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर, एज ऑफ द गॉड्स इज ओवर। माता जी ने यहाँ तक कहा जिनको पूजा करनी है उनकी कर सकते हैं, कोई ये नहीं, इस परहेज नहीं है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि इसका अति मानस सत्य से कोई लेना देना नहीं है। अति मानस सत्य के पास इन सब की हार्मनी है, सिंथेसिस है, प्रत्येक देवता को वो उसी एक के एक एस्पेक्ट का प्रतिनिधित्व करते देखता है। तो आप जब एक को इन्वोक कर रहे हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है किसी बीच में किसी और चीज के आने की, और वह एक अपने आप, लेकिन आप किसी को रिमूव नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इसका यहाँ स्थान है, उसका वहाँ स्थान है। आप ये नहीं कर रहे हैं कि किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं या डाइवर्ट कर रहे हैं, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनको रिलीजन की ज़रूरत है, जिनको आइडियोलॉजी से पोषित होते हुए अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके पार जाने को तैयार हैं। तो जो 24 नवंबर को हुआ, इस अधिमन का जो शासन चल रहा था वो पूरी तरह भौतिक जगत में उतर जाता है। मतलब ये कि अब सारे जो अधिमन के देवता हैं, मुख्यतः चारों देवता हैं, उनकी शक्तियां हैं, अगर आप इसको एक थोड़े पौराणिक कथाओं में जैसे बताया जाता है उस तरह से कहें, तो ये उन सब ने आकर के, और सबके अधिष्ठाता कौन है, श्री कृष्ण है, वो आके श्री अरविंद को सौंप देते हैं और क्या कहते हैं, आगे का युग अब तुम्हारा है। अब तक जहां तक प्रगति, और आप देखिए 1908 से श्री कृष्ण तैयार कर रहे हैं श्री अरविंद को आगत युग के लिए पूरी तरह, कि अब आने वाला जो युग है सुपर माइंड का युग है, देवताओं के जो परे जाने वाला युग है, उसकी कई समस्याएं, इफ्स एंड बट्स हैं, वो एक बहुत लंबा विषय है। आई एम नॉट गोइंग इन टू इट कि देवताओं का क्या रोल होगा, मनुष्य कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस से फ्री होंगे तो उससे जो अस्थिरता आ सकती है, ये सारी चीजें श्री अरविंद बताते हैं। एक एक ऑर्गन के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा, भोजन के ऊपर, परस्पर संबंध के ऊपर, जेंडर के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण, आप कहिए कि अब तक ये सारा इवोल्यूशन ओवर माइंड पे है, वो आनंद घन, लेकिन वो ओवर माइंड पर आकर के अधिमन, जो मन की उच्चतम शिखर है, वहां से वो इवोल्यूशन को कंडक्ट कर रहे थे। अब वो कहते हैं मैं आप तुम में पूरी तरह एक हो जाता हूं। माता जी कहती हैं विच श्री कृष्णा, तो कहती द पर्सनालिटी ऑफ द अवतार, तो वो पूरी तरह उनसे एक हो जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि इसी के साथ उनको स्वीकृति मिल जाती है कि अब आगे की चीज की जा सकती है। इसीलिए उसके बाद श्री अरविंद आश्रम की स्थापना होती है, डिवाइन मदर को सामने रख देते हैं श्री अरविंद, और आगे का सारा पथ खुलता जाता है। तो अतिमन, जहां वन एंड द मैनी दोनों पूरी तरह कॉन्शियस है, अधिमन जहां से प्रारंभ हो रहा है अब, जहां मैनी विल प्रोग्रेसिवली फॉरगेट द वन, जैसे घर से चार बच्चे निकले, घर में जब बड़े हुए तो सब जानते हैं भैया बहन एक दूसरे के अपने हैं, जब बाहर निकले एक ही माँ पिता ने उन सब के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दी, अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड दे दिया, सब व्यवस्था दे दी, अब उनको जाना है क्योंकि दे हैव टू बिकम कैपेबल एडवेंचर ऑफ टाइम एंड स्पेस। जब गए तो धीरे धीरे देखिए, लड़के तो सारे भूल गए, लड़कियां थोड़ा जोड़े रहती हैं घर गृहस्थी को, पर दे जस्ट गो इन देयर ओन वे। उसके बाद कई बार जो होता है ना ही उसका वर्णन किया जाए, आपस में भाई भाई कलह क्लेश करते हैं। तो सुपर माइंड में वो सब एक है, ओवर माइंड में अप टिल द हाईएस्ट लेवल वहां पर है थोड़ा ये भान, लेकिन जैसे ही आगे आते हैं देश काल के एडवेंचर में, फिर वो विस्मृति होते होते वहीं पर अविद्यामय माया। तो इसलिए एक और शब्द यूज करते हैं श्री अरविंद, विद्यामय अविद्यामय, ये दोनों उस डिवाइन मदर परम शक्ति से, पराशक्ति से जन्म लेती है। विद्यामय माया जो ओवर माइंड और सुपर माइंड में ऑपरेट करती है, वहां अनेक है लेकिन एक पूरी तरह सचेत है, और जैसे ही वहां प्रत्येक यूनिट जो अनेकत्व की कड़ी है वो भूल जाती है उस एक को अपने अंदर भी और बाकी सारी सृष्टि में भी, वहाँ अविद्यामय माया, वो एक वेल, पर्दा आ जाता है, और वो आवश्यक है जिसकी बात हुई है कि मैं भिन्न हूँ, मैं अलग हूँ। अब आप फेस कीजिए एडवेंचर, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ दे दे तो बच्चे तो निकृष्ट हो जाएंगे। समझदार पेरेंट हमेशा कहते हैं जरूरत पड़े तो बुलाना, अपनी खोज खबर देते रहना, पर वो अलाउ करते हैं टू ग्रो, टेक द चैलेंज ऑफ लाइफ इन देयर ओन वे एंड डेवलप थ्रू ऑल दैट. तो विस्मृति भी आवश्यक है. अविद्यामय माया भी आपको विस्मृत करा देती है कि भगवान है. तो आप क्या करते हो, आप जीवन से चैलेंज तो आप भागोगे नहीं ना. तो कई बार इवन एथीज्म एक आवश्यक कार्य करता है, क्योंकि थीस्ट की समस्या क्या होती है, वो हर चीज बाहर डाल देता है. ये राहु केतु के कारण, ये इस देवता के कारण, ये उस होस्टाइल फोर्स के कारण, ये उसके कारण, ये सास ससुर के कारण, ये बहु बेटे के कारण. आप अपना कोई दायित्व नहीं है आपका, और कुछ नहीं तो भगवान के कारण. भगवान तो बेचारे फाइनल कंप्लेंट, मतलब आपका अपना कुछ भी नहीं है. तो जो एथीस्ट होता है उसके पास ये कोई साधन उपलब्ध नहीं है. तो वो क्या कहता है, कहता है जूझना है, जो भी है समस्या मुझे ही जूझना है. तो ये भी एक, अब देखिए भगवान की लीला कैसी है कि वो जब स्वयं को वेल करते हैं उसमें भी उनका एक प्रयोजन है. सब डेवलप करते हैं हम लाइफ के चले, फिर एक समय आता है जब अपने आप आपके अंदर खोज जागृत होती है. वही जागृत कराते हैं, वही छिपाते हैं, वही जागृत कराते हैं, वही छिप जाते हैं, क्योंकि आवश्यक है हमारी प्रगति के लिए. फिर एक समय आता है जब वही जागृत कराते खोज, और फिर वही रिवील करते हैं. ये प्रोसेस है सृष्टि की. तब इन सब का कड़ियां मिल जाती है, अर्थ स्पष्ट होता है. ये अविद्या, ये इल्यूजन जिसको हम कहते हैं अज्ञान, ये सब क्यों है. और प्लान है कि एक एक यूनिट जो है वो परमात्मा बनेगी, केवल अंदर नहीं देह तक में. एक बहुत लंबा विषय है. जय मां.